चलिए आज समझते हैं पूज्य गुरुदेव के 15वें युग निर्माण सत्संकल्प को। पता है, ये संकल्प हमें सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने के लिए नहीं कहता, बल्कि ये तो हमें समाज में जो अनीति और बुराइयां फैली हैं ना, उनके खिलाफ एक योद्धा बनने के लिए तैयार करता है। तो सवाल ये है कि ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है? तो देखिए, पहली और सबसे बड़ी लड़ाई है खुद से। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भाई, समाज को बदलने से पहले हमें अपने अंदर के जो दुश्मन हैं, जैसे आलस्य, गुस्सा, असंयम, उन्हें जीतना होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे गीता में अर्जुन को बाहरी कौरवों से लड़ने से पहले अपने भीतरी मोह से लड़ने के लिए कहा गया था। सीधी सी बात है, सच्चा विजेता वही है जिसने खुद को जीत लिया हो। अच्छा, दूसरी बात, ये सत्संकल्प हमें समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी बुराइयों से सीधे लोहा लेने का आह्वान करता है। इसमें क्या क्या शामिल है? शादियों में फिजूल खर्ची, मृत्यु भोज, जाति के आधार पर ऊंच नीच और नारी का तिरस्कार। मतलब इसका उद्देश्य सिर्फ इन कुरीतियों का विरोध करना नहीं है, बल्कि एक इतना मजबूत जन आंदोलन खड़ा करना है कि ये प्रथाएं समाज में शर्मनाक मानी जाएं और पूरी तरह खत्म हो जाएं। और अंत में तीसरी बात, सज्जनों को संगठित होकर अनीति का हर स्तर पर मुकाबला करना होगा। ये सत्संकल्प साफ कहता है कि अच्छे लोगों को चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, उन्हें एक साथ आकर भ्रष्टाचारी, बेईमान और पाखंडी लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना होगा, चाहे वो व्यापार में हो, राजनीति में या फिर धर्म के क्षेत्र में। मकसद बस ये है, एक ऐसा माहौल बनाना है जहां गलत काम करने वालों के लिए समाज में मुंह दिखाना भी मुश्किल हो जाए। तो संक्षेप में कहें तो ये संकल्प केवल अच्छा बनने का नहीं, बल्कि अच्छाई की स्थापना के लिए एक निडर योद्धा बनकर हर अन्याय के खिलाफ लड़ने का आह्वान है।
आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 21वीं सदी में एक योद्धा होने का मतलब क्या है। क्या इसका मतलब तलवार उठाना है या कुछ और? हमारे पास जो सत्संकल्प है वो कहता है कि असली लड़ाई कहीं और ही लड़ी जाती है।
बिल्कुल,
ये विचार पूज्य गुरुदेव के युग निर्माण सत्संकल्प से लिया गया है। ये एक तरह से बेहतर दुनिया बनाने के लिए संकल्पों का एक खाका है
जी।
और इसका 15वां संकल्प खास तौर पर एक्शन की बात करता है, सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। आइए इसको थोड़ा और समझते हैं।
ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये बदलाव के लिए एक साथ दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाता है।
दो रास्ते,
हाँ। एक तरफ जो सज्जन हैं, जो बातों से समझते हैं, उनके लिए विवेक, तर्क और प्रेम का रास्ता है। लेकिन दूसरी तरफ जो दुष्ट और हठी हैं, उनके लिए लोहार की नीति अपनाने को कहा गया है।
अच्छा,
महाभारत का उदाहरण यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने की हर कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना
तो फिर अर्जुन के बाणों का सहारा लेना ही पड़ा।
बिल्कुल वही बात है।
लोहार की नीति, ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। इसका मतलब है सख्ती से पेश आना है?
नहीं, सिर्फ कठोरता नहीं, इसका मतलब बहुत गहरा है।
अच्छा,
इसका मतलब है उन समस्याओं से सीधे टकराना जो प्यार से या समझाने से हल नहीं होती। अब सोचिए, एक लोहार जानता है कि ठंडे लोहे पर चोट करने का कोई फायदा नहीं।
सही बात है।
वो पहले लोहे को सही तापमान तक तपाता है और फिर सटीक चोट करता है। वैसे ही समाज की कुछ बुराइयों से लड़ने के लिए सही समय पर सही और मजबूत कदम उठाने पड़ते हैं। ये एक सोची समझी मजबूत कार्रवाई है, सिर्फ गुस्सा नहीं।
ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब कि हम बाहरी दुश्मनों से लड़ने की सोचते हैं, पर असली दुश्मन तो हमारे अंदर ही बैठे हैं।
बिल्कुल,
ये तो लड़ाई का मैदान ही बदल देता है ना?
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर गीता का रहस्यवाद सामने आता है। सत्संकल्प यही कहता है कि सबसे बड़ी और असली लड़ाई तो अपने ही दोष दुर्गुणों से है। हमारा आलस्य, हमारा गुस्सा, असंयम, यही हमारे असली कौरव हैं।
अच्छा,
और हमें अर्जुन बनकर इनसे लड़ना है। जिसने खुद पर विजय पाली वही तो सच्चा विजेता है।
सही है।
अगर हम इन भीतरी बुराइयों को खत्म नहीं करेंगे तो हमारे अच्छे गुण कभी पनप ही नहीं सकते, जैसे खरपतवार के बीच फसल नहीं उग सकती।
ये बात तो सोचने वाली है। हम अक्सर समाज बदलने की बात करते हैं, लेकिन ये संकल्प कहता है कि असली क्रांति तो अपने अंदर से शुरू होती है
जी।
अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता खुद ही गुस्से और अहंकार से भरा है तो क्या वो सच में समाज में शांति ला सकता है? ये तो पूरी लड़ाई को एक बाहरी संघर्ष से हटाकर एक आंतरिक साधना बना देता है।
आपने एकदम सार पकड़ लिया। और जब व्यक्ति ये अंदरूनी लड़ाई जीतता है, तभी वो सामाजिक लड़ाई के लिए ठीक से तैयार होता है। सत्संकल्प में समाज में फैले छल, झूठ और पाखंड का जिक्र है, और कुछ कुरीतियों को तो असुर की संज्ञा दी गई है।
असुर? जैसे कि कौन सी कुरीतियाँ?
जैसे विवाहोन्माद।
विवाहोन्माद?
हाँ, यानी शादियों में होने वाली बेहिसाब फिजूल खर्ची, ये परिवारों को कर्ज में डुबोकर बेईमान बनने पर मजबूर करती है।
हाँ, ये तो है।
इसके अलावा मृत्यु भोज जैसी प्रथाएं, जाति के आधार पर ऊंच नीच का भेद और नारी का तिरस्कार, इन सबके खिलाफ सिर्फ भाषण नहीं देने हैं।
तो फिर क्या करना है?
सत्संकल्प का आह्वान है कि इनसे सक्रिय होकर लड़ा जाए, भले ही इसके लिए अस्थायी अशांति का खतरा क्यों ना उठाना पड़े।
तो इस सबको मिलाकर देखें तो आज के युग का योद्धा कौन है? जाहिर है उसके हाथ में तलवार तो नहीं होगी।
बिल्कुल नहीं। आज का योद्धा वो है जिसमें समाज में फैली अनीति, भ्रष्टाचार और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाने का साहस हो। सत्संकल्प के अनुसार इसमें भ्रष्ट लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना,
अच्छा,
धर्म के नाम पर ठगने वालों का पर्दाफाश करना, और शासन प्रशासन को लोक मंगल के लिए काम करने पर विवश करना, ये सब शामिल है।
तो इसके लिए हथियारों की नहीं?
नहीं, इसके लिए हथियारों की नहीं, बल्कि एक प्रबल लोकमत यानी जन जागरूकता की शक्ति की जरूरत है। जैसा नेताजी सुभाष बोस ने भी कहा था।
क्या कहा था उन्होंने?
कि सबसे बड़ी शक्ति धन या हथियार नहीं, बल्कि संकल्प लिए हुए मनुष्य हैं।
तो कुल मिलाकर ये 15वां संकल्प सिर्फ एक नियम नहीं है, ये तो व्यक्तिगत शुद्धि से लेकर सामाजिक नव निर्माण तक एक संपूर्ण क्रांति का ब्लूप्रिंट है।
जी,
एक ऐसा धर्म युद्ध जिसे हर स्तर पर लड़ा जाना है, अंदर भी और बाहर भी एक साथ।
और ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी छोड़ जाता है।
क्या?
सत्संकल्प कहता है कि अन्याय को चुपचाप सहते रहने से कभी सच्ची शांति स्थापित नहीं हो सकती।
सही बात है।
तो सोचने वाली बात यह है कि क्या कभी कभी हमारी जो व्यक्तिगत शांति है, हमारा जो आराम है, वो समाज में एक बड़े अन्याय को पनपने का मौका तो नहीं दे देता?
ये तो बहुत गहरा सवाल है।
अपने निजी सुकून और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच वो सही संतुलन क्या होना चाहिए, ये सोचना होगा। अभिवादन। आज हम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित हमारा युग निर्माण सत्संकल्प के एक बहुत ही शक्तिशाली संकल्प पर बात करने वाले हैं।
जी।
यह 15वां संकल्प सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं लगता, ये तो अपने आप में एक पूरा एक्शन प्लान है। एक तरह से आज के युग का योद्धा कैसे बना जाए ये सिखाता है।
बिल्कुल।
तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले मेरे मन में एक सवाल आता है कि अनीति से लड़ने के लिए अलग अलग तरीकों की बात क्यों की गई है?
ये एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, व्यवहारिक बात है।
अच्छा।
सत्संकल्प ये समझता है कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, और आप हर किसी से एक ही तरीके से नहीं निपट सकते। जो लोग स्वभाव से कोमल हैं, सज्जन हैं, बस थोड़ी भूल चूक हो गई है, उन्हें तो विवेक, तर्क और प्रेम से समझाया जा सकता है।
ठीक है।
लेकिन जो कठोर हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, उनके लिए सत्संकल्प कहता है कि लोहार की नीति अपनानी पड़ेगी।
लोहार की नीति? ये तो सुनने में काफी कठोर लगता है, इसका क्या मतलब है?
मतलब ये कि जैसे एक लोहार टेढ़े मेढ़े लोहे को सीधा करने के लिए पहले उसे आग की भट्टी में तपाता है,
हाँ,
और फिर घनघोर हथौड़ों से पीटता है, वैसे ही कुछ दुष्ट प्रवृत्तियों को सीधा करने के लिए कठोर संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ता है।
इसका कोई उदाहरण है?
सबसे बड़ा उदाहरण तो महाभारत में है। भगवान श्री कृष्ण ने अंत तक कोशिश की।
हाँ, शांति दूत बनकर भी गए थे।
हर तरह से प्रयास किया कि दुर्योधन प्रेम से, तर्क से मान जाए, लेकिन जब सारे प्रयास फेल हो गए, तब उन्होंने अर्जुन के बाणों से ही उसे सीधा करने का प्रबंध किया। संदेश साफ है, हिंसक पशु नम्रता की भाषा नहीं समझते।
अच्छा, तो ये लड़ाई सिर्फ बाहरी दुनिया तक ही सीमित नहीं है, है ना? सत्संकल्प में गीता के रहस्यवाद का भी जिक्र आता है।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। असल में सबसे बड़ी लड़ाई तो व्यक्ति के अपने ही भीतर होती है।
अपने अंदर?
जी, यही तो गीता का असली सार है। अर्जुन रूपी जीव को अपने ही मन में छिपे कौरवों से लड़ना है।
मन में छिपे कौरव? मतलब?
मतलब हमारे अपने दोष दुर्गुण। सद्गुणों को विकसित करने की साधना तभी सफल हो सकती है जब हम अपने अंदर के दुश्मनों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खड़ा करें।
जैसे कि?
जैसे आलस्य, आवेश, असंयम, ये सब हमारे अंदर के कौरव ही तो हैं। सत्संकल्प कहता है कि सच्चा विजेता वही है जिसने खुद को जीत लिया हो।
यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। मतलब बाहरी और भीतरी दोनों लड़ाइयों को एक साथ लड़ने की बात कही गई है।
जी, और दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
तो अगर हम समाज में फैली बुराइयों की बात करें तो सत्संकल्प क्या कहता है? आज की तस्वीर क्या है?
सत्संकल्प समाज की एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही चिंताजनक तस्वीर दिखाता है। उसमें बताया गया है कि नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक तीनों ही क्षेत्रों में छल, असत्य, बनावट, विश्वासघात, इन सब का बोलबाला हो गया है।
और व्यक्ति
संकीर्ण होता जा रहा है, स्वार्थी, ओछा, जिसका लक्ष्य सिर्फ पेट और प्रजनन तक सिमट गया है,
मतलब बस अपने लिए जीना।
बिल्कुल।
और इसी वजह से समाज को पुलिस, जेल और कानून की जरूरत तो है, लेकिन अगर आम जनता, सज्जन लोग अनीति का प्रतिरोध नहीं करेंगे तो दुष्टता और उद्दंडता सब कुछ निगल जाएगी।
तो इस माहौल में फिर एक योद्धा की परिभाषा क्या होगी? क्या वो जो तलवार चलाता है?
नहीं, अब मापदंड बदल गए हैं।
कैसे?
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि किसी जमाने में तलवार चलाने वाले को योद्धा माना जाता था।
हाँ।
पर आज?
हाँ।
आज के दौर में सबसे बड़ा बहादुर और योद्धा वो है जो समाज में फैले आतंक, अनाचार और दुर्बुद्धि के खिलाफ लड़ने का साहस दिखाए,
भले ही उसे चोट खानी पड़े।
इसी बहादुरी से एक शोषण विहीन समाज की स्थापना हो सकती है। सत्संकल्प में कुछ खास सामाजिक बुराइयों का नाम भी लिया गया है जिनसे लड़ने का आह्वान है।
हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो विवाहोन्माद।
विवाहोन्माद मतलब शादियों में होने वाला पागलपन।
बिल्कुल। शादियों में जो फिजूल खर्ची होती है उसे एक सत्यानाशी असुर कहा गया है।
सत्यानाशी असुर, ये तो बहुत ही शक्तिशाली शब्द है।
है, क्योंकि ये समाज को बेईमान और गरीब बनाता है। संकल्प में साफ कहा गया है कि इसके खिलाफ प्रचार से लेकर असहयोग और सत्याग्रह जैसे बड़े कदम उठाए जाएंगे
जब तक ये सादगी वाले विवाहों का चलन ना हो जाए।
जी, जब तक पूर्ण सादगी ना आ जाए।
और इसके अलावा?
इसके अलावा मृतक भोज, पशु बलि की नृशंसता, ऊंच नीच के नाम पर मानवीय अधिकारों का हनन
और नारी का तिरस्कार।
हाँ, और नारी का तिरस्कार, इन सब को समाज पर कलंक बताया गया है जिनके विरुद्ध सक्रिय कदम उठाने ही होंगे।
तो ठीक है, दुश्मन की पहचान तो होगी अंदर भी और बाहर भी, लेकिन इस धर्म युद्ध को लड़ने की रणनीति क्या होगी?
रणनीति बहुत साफ है। पहला कदम है एक प्रबल लोकमत तैयार करना।
लोकमत मतलब पब्लिक ओपिनियन।
जी, सत्संकल्प में एक कल्पना की गई है कि हराम की कमाई खाने वाले भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ समाज में इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हो
कि
उनका सड़क पर चलना और मुंह दिखाना मुश्किल हो जाए, लोग उन्हें धिक्कारें,
यहाँ तक कि नाई, धोबी, दर्जी ऐसे लोग भी उनका बहिष्कार करें।
हाँ बिल्कुल, उनका सामाजिक बहिष्कार हो। जब अनीति करने वाले को समाज में सम्मान मिलना बंद हो जाएगा तभी अनीति खत्म होगी।
इसके साथ ही सार्वजनिक संस्थाओं पर जो स्वार्थी लोग कब्जा जमाए बैठे हैं,
उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंकने की बात कही गई है।
और जो धर्म का लबादा ओढ़े,
जो रंगे सियार हैं, उनकी असलियत को चौराहे पर लाने का आह्वान है। और यही बात शासन तंत्र में बैठे नेताओं और अफसरों पर भी लागू होती है।
उन्हें यह सोचना होगा कि सत्ता लोकमंगल के लिए है, निजी लाभ के लिए नहीं।
बिल्कुल, उन्हें इस बात के लिए मजबूर करना होगा।
ये लड़ाई बहुत बड़ी लगती है, लेकिन सत्संकल्प में एक प्रेरक प्रसंग भी दिया गया है, आजाद हिंद सेना का।
हाँ, वो बहुत ही शक्तिशाली प्रसंग है। जब सुभाष बाबू को सेना के लिए धन चाहिए था तो एक व्यक्ति ने अपना सब कुछ दे दिया और कहा कि क्या हमारी पात्रता सिर्फ धन से जांची जाएगी।
ये सुनकर तो नेताजी की आंखों में आंसू आ गए होंगे।
आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि सबसे बड़ी शक्ति धन नहीं, मनुष्य है, और उन्होंने धन की जगह जवान मांगने शुरू कर दिए।
ये बताता है कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए समर्पित मनुष्य ही सबसे बड़ी पूंजी हैं।
बिल्कुल, चरित्रवान लोग ही असली ताकत है।
तो कुल मिलाकर ये 15वां सत्संकल्प सिर्फ अनीति से लड़ने का नारा नहीं है।
नहीं,
ये तो एक नए युग का निर्माण करने का, एक नव सृजन का पूरा रोडमैप है, एक ऐसा संघर्ष जो व्यक्ति के मन से शुरू होता है
और परिवार, समाज से होते हुए राष्ट्र तक जाता है।
ये एक ऐसा धर्मयुद्ध है जो पग पग पर लड़ा जाना है।
जी, और ये तभी समाप्त होगा जब मानवता के आदर्शों की विजय पताका पूरे विश्व में फहराने लगेगी। ये एक अंतहीन मगर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
आज की इस चर्चा से एक विचार मेरे मन में आ रहा है।
बताइए।
सत्संकल्प में भ्रष्टाचारियों और अनीति करने वालों के सामाजिक बहिष्कार की बात कही गई है। ये तब की बात है जब संचार के साधन बहुत सीमित थे।
आज हम डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में हैं,
जहां लोकमत बनाना बहुत आसान और तेज हो गया है।
हाँ, चुटकियों में हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस सिद्धांत को आज के दौर में कैसे लागू किया जा सकता है,
और
इस तरह की शक्ति का उपयोग करते समय हमारी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, ताकि ये न्याय का साधन बने, न कि किसी को बदनाम करने का हथियार। इस पर सोचना शायद आज के योद्धा के लिए सबसे जरूरी है।